તારીખ 29/12/1989 શ્રી પરમાગમ સાર બોલ નંબર 47, 48 અને 51 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 603 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
समय सार संवर्धिकार में तो ऐसा कहा है कि जानन क्रिया आधार है और द्रव उसका आदेश है. वहाँ आश्रय की मतलब अवलंबन की बात नहीं है, परंतु जिसमें जाना जाता है उस अपेक्षा की मुख्यता से वहाँ बात है. समर अधिकार में ये बात लिया है जानन क्रिया. जानन क्रिया आधार है और वस्तु का स्वभाव आधेय है. तो ये विवक्षा उल्टी कर दी है यहाँ पर. उपदेश में तो ये कहेंगे कि अपना द्रव्य स्वभाव है वही आधार है. आधार तो अपना मूल स्वभाव है और आधार लेने वाली आधेय अपनी पर्याय है. यहाँ जो कथन पद्धति है विवक्षा है वो बिल्कुल उल्टी कर दी है. तो ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है, ऐसा कहने के पीछे कौन सा प्रयोजन है ये स्पष्ट करते हैं गुरुदेव श्री. कि जानन क्रिया को आधार कहा और द्रव्य का उसको आधेय कहा, वहाँ जानन क्रिया का अवलंबन की बात कहने का हमारा अभिप्राय नहीं है. शब्द तो आधार आधेय का प्रयोग किया है, शब्द प्रयोग ऐसा करने पर भी आधार लेना, आश्रय करना, अवलंबन लेना ये हमारा यहाँ कहने का अभिप्राय ही नहीं है. ऐसा स्पष्ट करते हैं ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है. वहाँ आश्रय अवलंबन की बात नहीं है, परंतु फिर क्या बात है कि जिसमें जाना जाता है, जिस निमित्त से, जिस आधार से जाना जाता है. जैसे हम ये कहें कि हमारा आत्मस्वरूप को हम कहाँ पाएंगे, हमारा द्रव्य स्वभाव को हम कहाँ पाएंगे कि पर द्रव्य में तो हमारा स्वरूप नहीं है. अब जो हमारा स्वरूप है वो हमको विचार में, विकल्प में, परोक्ष रूप में तो समझ में आता है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से उसे प्राप्त करना है तो कहाँ से प्राप्त करें. तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तेरी जानन क्रिया माँ से उसे पकड़. ये पकड़ने के लिए जानन क्रिया आधार है ऐसा कहो, या निमित्त है ऐसा कहो, या साधन है ऐसा कहो, शब्द प्रयोग कुछ भी करो, लेकिन अभिप्राय जो है वो उतना है कि जानन क्रिया में से पकड़ो उसको. जानन क्रिया में अपना ज्ञान स्वभाव जो है वो वहाँ खुला अंश में है. ફસાયેલી છે એટલે વધારે અવાજ કરે. तो वहाँ पर्याय का अवलंबन लेने की बात नहीं है, लेकिन पर्याय के माध्यम से, पर्याय के जरिए हमें पकड़ने में आता है स्वभाव। तो यहाँ पर जो है संवर किस विधि से होता है, स्वरूप का आलंबन लेने से संवर होता है, लेकिन स्वरूप का आलंबन तो हमें लेना है, लेकिन हमको स्वरूप का आलंबन नहीं मिलता है तो वो कैसे मिले। स्वरूप का आलंबन नहीं मिल रहा है तो कैसे मिले, क्योंकि जानन क्रिया में से पकड़ो उसको, ऐसा कहते हैं। कहाँ है स्वभाव के जानन क्रिया में है। तो ये विधि का एक सूक्ष्म विषय ये है यहाँ पर कि अनुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव तो एक प्रत्यक्ष पर्याय है और स्वरूप भी प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष पर्याय को प्रत्यक्ष करने में सहज प्रत्यक्ष स्वरूप का जो आलंबन लेना है, उस आलंबन लेने में प्रकार विधि का ऐसा होना चाहिए कि प्रत्यक्ष तौर से उसके प्रति परिणाम गतिमान करें, ऐसा। पर्याय में स्वभाव का जो भाव है, स्वभाव भाव है, वो इस तरह आना चाहिए कि जिस तरह वो पर्याय स्वभावाकार स्वरूपाकार परिणमन करने लगे। तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष का जो प्रकरण है उसमें प्रत्यक्ष का कोई विकल्प नहीं है, कोई पर्याय नहीं है दूसरा, कोई अल्टरनेटिव नहीं बैठता है प्रत्यक्ष का। इसलिए श्रीमद् जी ने इससे भी ज्यादा प्रत्यक्ष एक बात कर दी कि जब प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष तौर का कोई भाव उठता है तो अगर तेरी जानन क्रिया में तुझे प्रत्यक्ष स्वभाव नहीं मिले तो हम एक दूसरी बात बताते हैं कि जिस महात्मा की दशा में स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया, प्रकट हो गया, उनके संग में जाने से उनकी वाणी में ये विषय इस तरह से झलक करके बाहर आएगा कि तुझे कुछ इस विषय की जो भाव भाषण होना चाहिए, इस विषय का ये परिस्थिति में तो आ सकेगा। तो इससे भी सरल किया। कि देखिए प्रगट प्रत्यक्ष भाव से तुझे कोई समझ में आवे ऐसी बात है, क्योंकि जानन क्रिया को तो वाणी नहीं कि जो अपने आप को कुछ कह सकें, बता सकें, और जो जानन क्रिया अज्ञान अवस्था में है उस जानन क्रिया में से स्वभाव को पकड़ना थोड़ा और कठिन है, क्योंकि वहाँ एक स्वानुभूत्यावरण, भाव स्वानुभूत्यावरण वर्तता है। वहाँ मैंने ज्ञान ज्ञान का अनुभव करे उस पर एक आवरण है, वहाँ वो इस प्रकार का आवरण है कि ज्ञान पर को अनुभव करने पर लग गया है, पर का अनुभव में लगा हुआ है। तो पर में लगा हुआ ज्ञान में पर्याय में एक भावावरण ऐसा है कि वो स्वयं को, स्वयं के अनुभव को, स्वयं के वेदन को वो ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण क्या समझ भी नहीं सकता। ग्रहण करना तो कुछ आगे की बात है, लेकिन हम ये कहें कि देखो ज्ञान में ज्ञान वेदन है तो बोलता है कि उनको तो पता नहीं लगता है कि ज्ञान में ज्ञान वेदन है, ज्ञान में ज्ञान वेदन है क्या, तो समझ में नहीं आती है बात। ग्रहण करने में तो आवे ही कहाँ से, जब समझ में नहीं आती तो ग्रहण करने का तो एक पुरुषार्थ का विषय हो जाता है। ये बात अज्ञान अवस्था में उतनी कोई विकट परिस्थिति में पड़ी है तब संतों ने ये बात को और सरल किया कि तेरा स्वभाव तो है तेरी ज्ञानन क्रिया में प्रकट रूप से। हालांकि स्वभाव को प्रकट अप्रगट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ये तो द्रव्यगुण पर्याय तीनों में व्याप्त है। न द्रव्यगुण की अव्यक्तता उससे लागू होती है न पर्याय की व्यक्तता भी इसे लागू होती है, वो तो जो है सो है। फिर भी पर्याय व्यक्त अंश होने से यहाँ से उसको पकड़ने में आसान होता है, इसलिए आचार्य महाराज ने उसको आधार शब्द से थोड़ा वजन और दे दिया, ज्यादा वजन दे दिया। निमित्त नहीं कहा, साधन नहीं कहा, आधार करके बताया कि इसके आधार से तुम आगे चले जाओ। ऐसे जैसे कोई कहता है कि ये रस्सी पकड़ के तुम जरा ऊपर चलो, रस्सी को पकड़ करके जरा अपने आप को खींच करके ऊपर जाओ, तो रस्सी का आधार ले लो, ऐसा कहने में आता है। रस्सी तो साधन है, वहाँ निमित्त है। ऐसे ही एक जानन क्रिया एक ऐसी साधन है कि जहाँ से स्वभाव पाया जाता है, और यही संवर की विधि है। ये संवर अधिकार की प्रारंभ की गाथा है 181, 182, 183, तीन गाथा साथ में जो है उसमें ये बात चली है। नहीं पर्याय से आया यहाँ, पर्याय ने आधार कीधो छे, એટલે તો એ ચર્ચા કરી કે ખરેખર તો આધાર તો દ્રવ્ય છે, જેનો આધાર લેવો જોઈએ, આધારભૂત તત્વ તો દ્રવ્ય છે, અને પર્યાય તો આધાર લેવાવાળી છે, એનું અવલંબન લેવાવાળી છે, અને સમર અધિકારમાં ઉલટી કેમ વાત કરે છે? આચાર્ય મહારાજના શબ્દો પડ્યા છે, એટલે હવે તો અર્થઘટન શું કરવું એ સવાલ છે। હમ એ તો નહીં કહી શકતે કે એ તત્વ વિરુદ્ધ હૈ, આગમ વિરુદ્ધ હૈ, એ તો નહીં કહી શકતે, ये हिम्मत ही नहीं करनी चाहिए। अरे कोई ऐसा कहने वालों की कोई हैसियत भी है आचार्य के आगे? तो अब वो कहना क्या चाहते हैं, जब शब्द ऐसे पड़े हैं कि जानन क्रिया आधार है और द्रव्य उसका आधेय है, ऐसे शब्द आचार्य महाराज के, भगवान अमृतचंद्र आचार्य के ये शब्द हैं। मूल में आधार आधेय की बात नहीं ली है, लेकिन आचार्य महाराज विधि को खोलते हैं तो ये कहा कि यहाँ तो जानन क्रिया आधार है और द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव उसका आधेय है, तो गुरुदेव उसको खोलते हैं, कहते हैं कि यहाँ आश्रय और अवलंबन की बात नहीं है, हम जानन क्रिया को आधार बताते हैं, तो ये जानन क्रिया जो है वो उसका आधार आप लियो, अवलंबन लियो, ऐसा हमारा कहने का बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। इसलिए द्रव्य का आधार लेना है उसका विकल्प तो छोड़ो, तो ये बात तो यूं की यूं रखी है हमने, उस बात को हमने यहाँ स्पर्श नहीं किया, उसको उल्टाया भी नहीं, उसमें कोई फेरफार नहीं किया। इसलिए इस जो समझ कर रखी है कि द्रव्य का आधार लेना है, उस समझ में कोई आपत्ति नहीं खड़ी होती है, नई आपत्ति नहीं आती है, ये बात तो यूं की यूं रहेगी। अब हमारा कहने का अभिप्राय समझो कि यहाँ जिसमें जाना जाता है कहाँ से पकड़ना, ये बात है कि जिसमें जाना जाता है उस अपेक्षा की मुख्यता से वहाँ बात है। वो ज्ञान में जाना जाता है, ज्ञान की पर्याय में, जानन क्रिया में से जाना जाता है, यहाँ से पकड़ने में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी मुख्यता करके विधि को ग्रहण कराने के लिए ये बात कहते हैं। कई कथा मान બાકી આમ તો અવલંબનના વિષયમાં તો દ્રવ્ય જ આધાર છે, અને પર્યાયની આધેય છે, એ પ્રસિદ્ધ વિવિક્ષા છે. હવે અહીંયા ઉલટી વાત કરી તો શું, ક્યા કહેને કા અભિપ્રાય હૈ કે જિસમેં જાના જાતા હૈ ઉસ અપેક્ષા કી મુખ્યતા સે વહાં બાત હૈ, વહાં મેને સમયસાર મેં યે બાત હૈ. ધ્રુવ વસ્તુ સ્વયં ધ્રુવ વસ્તુ કો નહીં જાનતી હૈ, ધ્રુવ વસ્તુ સ્વયં ધ્રુવ વસ્તુ કો નહીં જાનતી હૈ, પરંતુ પર્યાય મેં ધ્રુવ વસ્તુ જાનને મેં આતી હૈ, પર્યાય મેં ધ્રુવ વસ્તુ જાનને મેં આતી હૈ. કાર્ય મેં કારણ કા જ્ઞાન હોતા હૈ, કાર્ય મેં જ્ઞાન કી પર્યાય ઉસમેં જો જાનને મેં આતા હૈ વો કારણ, કાર્ય મેં કારણ કા જ્ઞાન હોતા હૈ એસા દર્શાયા હૈ. વૈસે હી યહાં ભી એસા કહા હૈ કે સ્વાનુભૂતિ સે વસ્તુ પ્રકાશમાન હોતી હૈ. જો પહેલે શ્લોક મેં કહા કહા આચાર્ય મહારાજ ને સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે, હમ નમસ્કાર સ્વાનુભૂતિ કો નહીં કરતે, નમઃ સમય સારાય, નમસ્કાર તો હમ સમયસાર ધ્રુવ કો કરતે હૈ, લેકિન કહાં હૈ વો કે વો સ્વાનુભૂતિ મેં પ્રકાશમાન હૈ, સ્વાનુભૂતિ સે વો પ્રકાશમાન હો રહા હૈ. સ્વાનુભૂતિ મેં વો પ્રકાશમાન હોતા હૈ, ઉસકા જો પ્રકાશ હૈ વો સ્વાનુભૂતિ મેં દેખા જાતા હૈ, ઇસલિયે પ્રકાશ પ્રકાશ મેને પ્રગટપણા, પ્રકાશ મેને અનુભવ સંવેદન, બારમી પ્રકાશ શક્તિ હૈ. કે ક્યા પરિભાષા ક્યા અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવને, સ્વસંવેદનમયી પ્રકાશ શક્તિ, એસી પરિભાષા ક્યા. પ્રકાશ કા અર્થ લિયા હૈ વેદન, વેદન મેને અનુભવ. તો બહોત સે અધ્યાત્મ કે જ્યાં જ્યાં વિષય ચલતા હૈ, અધ્યાત્મ કા પ્રકરણ ચલતા હૈ, જ્યાં જ્યાં ભી વહાં પ્રકાશ કા અર્થ વેદન ઓર અનુભવ બહોત જગહ બેઠતા હૈ. જો ઇસ પરિભાષા કો દેખતે હુએ હમ કભી ઇસ દૃષ્ટિકોણ સે વિચાર કરતે હૈ તો પ્રકાશ કે જગહ અનુભવ ઓર વેદન બહોત બહોત સે જગહ યે ભાવ બેઠતા હૈ. યે સ્વાનુભૂતિ મેં અનુભવ ગોચર હોતા હૈ, સ્વાનુભૂતિ મેં વેદન ગોચર હોતા હૈ, એસા સમયસાર કો હમ નમસ્કાર કરતે હૈ, વહાં ઢલતે હૈ, ઉસકે પ્રતિ હમારા નમન હૈ, ઉસકે પ્રતિ હમારા ઝુકાવ હૈ, એસા ભાવ નિકલતા હૈ. વૈસે હી યહાં ભી એસા કહા હૈ કે સ્વાનુભૂતિ સે વસ્તુ પ્રકાશમાન હોતી હૈ, અર્થાત અનુભૂતિ કી પર્યાય મેં ધ્રુવ વસ્તુ જાનને મેં આતી હૈ. અનુભૂતિ કી પર્યાય મેં ધ્રુવ વસ્તુ જાનને મેં આતી હૈ, પરંતુ અનુભૂતિ કી પર્યાય પર દ્રષ્ટિ કરને સે ધ્રુવ વસ્તુ પ્રકાશમાન હોતી હૈ એસા યહાં નહીં કહેના હૈ. દ્રષ્ટિ પર્યાય કી નહીં કરની હૈ એસા, પરંતુ અનુભૂતિ કી પર્યાય પર દ્રષ્ટિ કરને સે ધ્રુવ વસ્તુ પ્રકાશમાન હોતી હૈ એસા નહીં હૈ, લેકિન વહાં સે દેખને મેં આતી હૈ, વહાં સે પાઈ જાતી હૈ, પકડને મેં આતી હૈ, ઉતની બાત હૈ. આશ્રય લેને કી બાત નહીં હૈ, દ્રષ્ટિ કરને કી બાત નહીં હૈ. નિર્મલ પર્યાય વસ્તુ કા આશ્રય કરતી હૈ તબ ઉસ નિર્મલ પર્યાય મેં વસ્તુ જાની જાતી હૈ. નિર્મલ પર્યાય વસ્તુ કા આશ્રય કરતી હૈ તો સ્વરૂપાકાર હો જાતી હૈ ઓર ઉસમે જો હૈ નિર્મલ પર્યાય મેં વસ્તુ જાનને મેં આતી હૈ. પર્યાય જાનને વાલી હોને સે પર્યાય દ્વારા દ્રવ્ય પ્રકાશમાન હોતા હૈ એસા કહા હૈ. બસ યે અભિપ્રાય હૈ. द्रव्य को पर्याय को आधार बनाने का यही कारण है कि वो जानने वाली जानन क्रिया है, वो उसके द्वारा ही द्रव्य प्रकाशमान होता है। द्रव्य कहाँ से प्रकाशमान होता है, कहाँ से वेदन गोचर होता है, कहाँ से अनुभव गोचर होता है, वो जानन क्रिया में। इसलिए उसको समझने के लिए आधार बताया प्रकट अवस्था को। ये प्रत्यक्षपणा का यह मुद्दा है कि प्रत्यक्ष जो चीज है उसको प्रत्यक्ष तौर से कैसे ग्रहण करे, तो उसमें ये जानन क्रिया से ग्रहण करने की पद्धति होती है, ये ऐसी एक विधि है। इसलिए उनको आधार है और द्रव उसका आधे है ऐसा कह दीजिए, क्योंकि वहाँ से पकड़ा। इसलिए तो ये विवेक्षा चली है समय सार के प्रारंभ में, और ये ठीक भी है। नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं, फिर विकल्प करते रहो, फिर वस्तु का स्वभाव का विकल्प करते रहो, ग्रहण नहीं होगी वस्तु। ऐसे कहने से समझ में आती है कि ध्रुव सामान्य ऐसा है, पर्याय रही है, ऐसे है ऐसी है, लेकिन जब ग्रहण करना है तो वस्तु तो अनंत प्रत्यक्ष है स्वभाव से ही, तो उसको ग्रहण करने में हस्तावलंब कोई है तो वो जानन क्रिया है, ये हस्तावलंब क्रिया। इसलिए उसको आधार शब्द का प्रयोग कर दिया कि यहाँ से वो ग्रहण होती है, और जगह से उसका कोई अनुभव का प्रयोग होता नहीं है। ये तो अनुभव का प्रयोग की पद्धति है, ये विधि मैंने अनुभव का प्रयोग की पद्धति है, ये तो ऐसे ही होता है। और तीन काल में जो ये कार्य पद्धति है उसमें कोई फर्क नहीं है। पर्याय की उपेक्षा तो वैसे ही सहज होती है अवलंबन के हिसाब से, वेदन के हिसाब से नहीं होती है। उसमें क्या है कि वेदते हुए भी उसको गौण करते हैं, उसका अवलंबन नहीं लेते हैं, ऐसा एक संतुलन बैठता है, हो जाता है। क्योंकि जो महान है वो हमेशा महान ही रहता है, स्वभाव महान है। एक समय की स्वभावाकार पर्याय इतनी महान नहीं है जितना स्वभाव महान है। तो जैसे राजा और इनके जो मुख्य मंत्री है, राजा है और उसके जो मंत्री है, बिल्कुल जो इसकी सेकंड चेयर लगती है, फिर भी जब दोनों साथ में आते हैं तब तो आदर तो राजा को छोड़कर मंत्री का नहीं किया जाता, राजा का ही आदर किया जाता है, राजा के आदर में उसका आदर आ जाता। अकेला मंत्री आवे तो राजा के बराबरी में उसका आदर कर देने कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब राजा साथ में है तो उनके सारे जो है जितने भी अधिकारी वो गौण रह जाएंगे, ऐसी बात है। तो अध्यात्म पर्याय की महिमा ग्रंथ ग्रंथों में शास्त्रों में बहुत है। सम्यक दर्शन, मुनिदशा, केवल ज्ञान, ये सब अध्यात्म पर्याय हैं, उनकी महिमा बहुत गाई है। फिर भी ये बात रखे हैं कि इसकी महानता स्वभाव की महानता से कोई अधिक है, ऐसा कहीं भी कहने का अभिप्राय नहीं होता, कहीं भी नहीं है, ये बात जरूर है। और कोई संतुलन खो बैठता है अब, ऐसे कोई द्रव्य दृष्टि की कथन पद्धति भी आती है जोर वाली, कि पर्याय कैसी है कि पर द्रव्यम पर भावम हेयम इति, ऐसे भी कहते हैं शास्त्र में भी ऐसी पद्धति आती है। तो कोई संतुलन उस पर से खो बैठे कि पर्याय का नाम मत लो, हमको तो पर्याय का वेदन वेदन कुछ हम समझे नहीं, हमको तो त्रिकाले के एक ही बात हमारी समझ में है, दूसरी बात नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं है। इसके लिए अगर आपको गुरुदेव के वचन देखने हैं तो इसमें दो जगह ये बात आई है। पांच सौ चौदह त्रिलोकनाथ की सत्ता का स्वीकार वितराग भाव से हुआ, वो भाव कहीं चला नहीं जाता, मैंने अभाव रूप नहीं होता, अनुभव तो अनुभव के वेदन में ही रहता है। परिणाम को गौण बतलाया है, पता है कहने वाले को कि परिणाम को गौण बतलाया है, सो तो लक्ष्य की अपेक्षा कहा है। लक्ष्य की अपेक्षा कहो, अवलंबन की अपेक्षा कहो, दृष्टि की अपेक्षा कहो, सब एक ही बात है। अनुभव की अपेक्षा से नहीं, अनुभव की अपेक्षा से परिणाम को गौण नहीं बतलाया है, ऐसा कहना है। अनुभव की अपेक्षा से तो वही मुख्य है, क्योंकि द्रव्य का तो अनुभव नहीं होता। मेरा तो वितरागी तत्व है, उसका मैं जब लक्ष्य करता हूँ तब तो वितरागी दशा प्रकट होती है, यही मेरे लिए मुख्य है। वेदन में आए मुझे तो वही मुख्य है, जो वेदन में आए वही मुझे मुख्य है। मैंने गोडाउन में कितना माल भरा हो, चीनी शक्कर घी आटा सब भी, लेकिन रसोई बनाकर पेट भरे, जो पेट भरने में जिसमें जितना आया उतना ही काम का तो है, दूसरा तो निकम्मा पड़ा है। ऐसा लक्ष्य की अपेक्षा से भले ही गौण किया हो, परंतु जो यह वेदन है उसे गौण करे तो न चले। देखो, गौण करे तो न चले, ऐसा कहते हैं। पूर्णानंद के नाथ को तूने जाना और उसका वेदन किया, उस वेदन को तू गौण न करना। हाँ, यह तो मात्र लक्ष्य करने की अपेक्षा से ही उसे गौण बतलाया है, यद्यपि मुख्य तो वही है जो आनंद स्वयं को प्रत्यक्ष वेदित हुआ, वही मुख्य है। है कि नहीं है? मैंने ये भी एक विवक्षा है, ये भी प्रवचन सार में भीष्म बोल लिया। द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी जो शुद्ध पर्याय, वही आत्मा है। क्या कहा? गुरुदेव के 91वीं जन्म जयंती मलाड में हुई, तो मलाड में ये बात चली 20वां बोल की प्रवचन सार में, कि यहाँ शुद्ध पर्याय की मुख्यता है, यहाँ द्रव्य गौण है, ऐसा बोले। ये फर्स्ट टाइम हमने सुना कि द्रव्य गौण है और पर्याय मुख्य है, लेकिन ये भी एक वेदन की अपेक्षा से एक बात है, यही बोल लिया है। आगे 541 में यही बात लिया है दोबारा। वहाँ समय सार के दूसरी दूसरी गाथाओं का आधार लेकर के बात किया है, और ये विधि की बात में वेदन से ग्रहण करने में आता है, तो विधि की बात में ये पर्याय को गौण नहीं करेंगे। वहाँ जैसे समय सार की गाथा 11 में मिला 541, हाँ 544 गाथा है, इकतालीस नहीं है, 44 है, गुजराती में 152, हिंदी में 135। समयसार गाथा 11 में पर्याय को गौण कर अभूतार्थ बतलाई है, वहाँ तो पर्याय का आश्रय छुड़ाने के लिए उसे गौण कर अभूतार्थ कहा है, परंतु पर्याय सर्वथा ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 15वीं गाथा अनुसार तो, अभी देखो विधि का विषय चला है 15वीं गाथा में, श्रुत ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान से तो ग्रहण कराते हैं, श्रुत ज्ञान ही आत्मा है, यहाँ पंद्रहवीं गाथा अनुसार तो जिसमें अबद्ध स्वरूप आत्मा अनुभव में आया वही वह पर्याय ही मुख्य है, वह पर्याय ही जैन शासन है, वह पर्याय ही मुख्य है, वह पर्याय ही जैन शासन है। आहा मेरा द्रव्य विकार रहित वितरागी तत्व है, उसका लक्ष्य करने पर पर्याय में वितरागता प्रकट होती है, वह वेदन की पर्याय ही मुख्य है। द्रव्य तो वेदन में नहीं आता, देखो जो 514 में कहा कि द्रव्य तो वेदन में नहीं आता, वेदन में तो पर्याय ही आती है, और वह वेदन की पर्याय ही मुझे तो मुख्य है। तो उसे ही गौण कर डाले सो कैसे चले। नाथ पूर्णानंद का नाथ जब जान ज्ञान और अनुभव में आया वह गौण नहीं हो, यह तो तुझे द्रव्य का लक्ष्य और आश्रय कराने के लिए पर्याय की गौणता बतलाई थी। परंतु करके इस बात को साइड ट्रैक पर ले जाते हैं। परंतु वेदन तो पर्याय में मुख्य है, भले ही द्रव्य का आश्रय करवाने हेतु परिणाम को गौण किया हो, परंतु ये परिणाम कहाँ जाए, ये वे अस्थि रूप वेदित होने वाले परिणाम कहाँ जा सकते हैं। आहा यह तो आत्मा पुकारता है, देखो ये तो आत्मा पुकारता है कि वितराग स्वरूप जो मेरा द्रव्य है उसका लक्ष्य करने से मुझे वितरागता वेदन में आती है और मुझे सुख चाहिए, मुझे तो ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो सुख चाहिए, ये वेदन की मुख्यता की बात है उसमें। और हर पत्र में भी बात बहुत आई है, दो तीन दिन पहले ही आधार लिया था। वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ, वर्तमान से ही देव आदिक देव गुरु शास्त्र पर अथवा उन आश्रित राग से किंचित मात्र लाभ का कारण नहीं, लाभ मानना ही अलाभ है। वेदन के अलावा अन्य कोई क्रिया जीव की नहीं, लिखो इस पत्र में वेदन का विषय कैसे व्यक्त कर दिया है। वेदन के अलावा अन्य कोई क्रिया जीव की नहीं, ज्ञान में ज्ञान वेदन है यही जीव की क्रिया है। शरीराश्रित अथवा अन्य पराश्रित आकुलन वेदन को आकुलित वेदन को समकाले ज्ञान वेदन द्वारा गौण करते करते नाश करना मुमुक्षुओं का ध्येय है, ये विधि का विषय है। नाश करना यही मुमुक्षुओं का ध्येय है, यही कार्य पद्धति है देह में आगे बढ़ने के लिए। क्या उसमें विज्ञान कौन सा है कि आकुलित वेदन एकाकार रूप से जीव अनुभव करता है। मिथ्यात्व अवस्था में राग को ही सर्वस्व जान करके मान करके उसके आश्रय से वहाँ एकत्व में ऐसा पड़ा है कि ये आकुलित वेदन है, इसकी मुख्यता छूटती नहीं है, एकता छूटती नहीं है, मुख्यता छूटती नहीं है, मुख्यता और एकता नहीं छूटती है। तो वेदन को, इस वेदन को वेदन की दवाई दिया, ऐसे आकुलित वेदन को मिटाने के लिए, गौण करने के लिए वेदन चाहिए, विज्ञान वेदन है। ज्ञान वेदन को मुख्य करने से ये वेदन गौण हो जाता है। अब ज्ञान वेदन मुख्य हुआ तो उसका आश्रय नहीं करना है। ज्ञान वेदन ही जब होता है कि त्रिकाली का आश्रय होता है, तब ऐसा ऐसी एक क्रिया है एक साथ। ये कहेंगे अभी कि यह ज्ञान वेदन कैसे उत्पन्न हुआ कि अखंड त्रिकाली अपरिणामी ध्रुव अस्तित्वमयी स्वपने के अनुभव में सहजी उदय होता है। दृष्टि और ज्ञान जब त्रिकाली में स्वपना करता है तभी वो उभर के आविर्भूत होता है। राग से भेद करता करता ज्ञान ज्ञान राग से भेद करता करता ज्ञान निशंकित निराकुल सुख वेदन के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण रूप प्रकट होता है। अभाव नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण रूप प्रकट होता है और वृद्धि पामता पामता, देखो ये हिंदी का है गुजराती है और वृद्धि पामता पामता, ये अपने खुद के दस्तखत में वो लिखते हैं, अनंत सुख व ज्ञान का लाभ कराता है। अप्रसिद्ध अवेदक मुख्य, अब सबसे मुख्य तो वो है, अप्रसिद्ध अवेदक मुख्य अखंड स्वभाव में श्रद्धा के स्व अस्तित्व रूप में प्रसरते ही प्रसिद्ध वेदन, ये मुख्य होने से प्रसिद्ध वेदन जो है जिसको मुख्य किया था अकुलित वेदन के सामने, ये भी गौण होकर के एक ही काल त्रिकाली व वर्तमान दोनों भावों का अनुभव होता है। अनुभव तो दोनों का होता है, एक की मुख्यता रहती है दूसरे की गौणता रहती है। ये नहीं कहा कि एक का अनुभव होता है दूसरे का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अनुभव तो त्रिकाली में हो ही नहीं सकता, चाहे सिद्ध हो चाहे निगोल, मैंने सब के सब अनुभव तो पर्याय में सबको है। इसलिए त्रिकाली व वर्तमान दोनों भावों का अनुभव है और यही भेद ज्ञान है। राग से पृथक ज्ञान का अनुभव ऐसे ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। एक पैराग्राफ में कौन क्या चीज बाकी रही, विधि का आश्रय का मुख्य का गौण का, कहाँ किसकी मुख्यता कहाँ किसकी गौण का, एक ही बोल में सब बात आ जाती है। अपनी विचक्षणता से ये पत्र लिखा गया है, अनुभव है ना, अनुभव को लिखते हैं। एक भी पत्र में किसी शास्त्र का आधार नहीं दिया है, कि जो मैं कहता हूँ वो इस शास्त्र में इधर पड़ा है। हाँ, जो अनुभव में आता है वो लिख देते हैं, वो कह देते हैं, ऐसे उनकी शैली थी। पाँव रखो, पाँव रखो मैंने आश्रय करो, पाँव रखो मैंने आश्रय करो, तो आश्रय करने वाली तो पर्याय है, तुम एक हो गई ऐसा। 47 हुआ, 48 नीचे वाला। उसको हमारे गुजराती में तो एंधाण कहते हैं, एंधाण। जब कोई चीज जैसे कोई दड़का खो गया तो बोलते कि कहीं एंधाण मिलता है, चिन्ह मिलता है, चिन्ह को एंधाण कहते हैं गुजराती में। एंधाण में क्या भाव है कि आखिरी में वो कहाँ था, छेले छेले वो किधर गया था, किसके पास गया था, किसके घर में था, कोई एंधाण मिलता है, यहाँ से उसका पता लगा है कि उसका अस्तित्व कहाँ है। तो श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में वो बात को लिया कि सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए। सर्व अवस्था ने विषय, ये सर्व ज्ञान की अवस्था की बात है, राग की नहीं। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, प्रकट रूप चैतन्यमय ए एंधाण सदाय। चैतन्य एनू लक्षण छे, प्रगट चैतन्य एनू लक्षण छे, एनू एंधाण छे। पकड़ त्यांथी एक कड़ी में केटली वात गर्भित पड़ी छे। द्रव्य दृष्टि के विषयभूत आत्मद्रव्य को सम्यक प्रकार से समझने हेतु ही आचार्य देव ने नयों का अधिकार लिखा है। द्रव्य दृष्टि के विषयभूत आत्मद्रव्य को, मैंने मूल स्वरूप को, असल स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझने हेतु ही आचार्य देव ने नयों का अधिकार लिखा है। ये प्रवचन सार में जो 47 में आए उसकी बात है। तो ये अपना ग्रंथ तो प्रकाशित हो गया है नए प्रज्ञापन करके, गुरुदेव के प्रवचन हो चुके हैं। प्रमाण ज्ञान के विषयभूत जो द्रव्य गुण पर्याय सहित का आत्मा, उसके यथार्थ ज्ञान बिना शुद्ध द्रव्यार्थिक नये के विषयभूत द्रव्य सामान्य का अवलंबन किस प्रकार लेंगे। मैंने ये तो एक अंश है, पूरे पदार्थ का एक अंश है, तो पूरे पदार्थ की जानकारी बिना ये अंश है ऐसा पता नहीं चलेगा, और अंश में भी ये मुख्य अंश है ऐसा पता नहीं चलेगा। जैसे आदमी को एक हाथ नहीं होता तो चलता है, एक आंख नहीं होती तो भी चलता है, एक पैर नहीं होता तो भी चलता है, लेकिन हार्ट में किसी का आधा हार्ट चले ऐसा तो नहीं चलता है। उसमें तो एक आर्टिलरी में कुछ गड़बड़ी होवे तो हार्ट अटैक चालू हो जाता है। तो ये एक ऐसा अंग है, मूल स्वरूप जो है वो सारे प्रमाणभूत विषय का, प्रमाण का जो विषय है प्रमाण ज्ञान का, इसका मुख्य अंग है, ये हार्ट है इसका। हाँ, अंश में पर्याय अंश है वो गौण होते हैं, और वो स्वभाव अंश है वही मुख्य होता है, और दोनों मिलके प्रमाण है। तो प्रमाण का जो ज्ञान करे, समझ करे, फिर पता चलता है कि ये अंश की मुख्यता करना है, इस अंश की गौणता करनी है, ऐसा, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा उसके फिर प्रति अंश देते हैं, पर्याय में अनु अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है, ऐसा पर्याय के, एक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत होते हैं। तो ये इनके अंश है सब, ऐसे एक पर्याय के ये सब अंश हैं। प्रमाण ज्ञान के विषयभूत जो द्रव्य गुण पर्याय सहित का आत्मा, उसके यथार्थ ज्ञान बिना शुद्ध द्रव्यार्थिक नये के विषयभूत द्रव्य सामान्य का अवलंबन किस प्रकार लेंगे। द्रव्य गुण तो त्रिकाल शुद्ध ही है, परंतु योग्यता रूप अनंत धर्म है। देखो ये पर्याय का अनंत धर्म आया कि नहीं आया। द्रव्य गुण तो शुद्ध है परंतु योग्यता पर्याय में जो योग्यता है इस रूप तो अनंत धर्म है पर्याय में, पर्याय के अनंत धर्म होते हैं। ऐसा जानकर त्रिकाली स्वभाव को मुख्य कर उसका अवलंबन लेना, यह इन नयों का कथन, इन नयों के कथन का प्रयोजन है। तो वो गुरुदेव ने ये बात कही कि नयों के विषयभूत जो आत्मा है उसमें अनेक नय से जाना जाता है, एक ही आत्मा को जाना जाता है। तो प्रयोजन को तो मूल स्वरूप को जानना और आश्रय कराने का है, यही प्रयोजन सभी अवलंबन मूल द्रव्य का लेने के लिए ही सभी नयों का प्रयोजन है। और वो तो परिभाषा करते थे कि नय में तो शब्द है वो नी धातु में से आया है, संस्कृत में मूल भाषा का धातु तो नी है, और नी का अर्थ होता है नी नय टू लीड, कहाँ ले जाना, लीड करना मैंने खींच के ले जाना, कहाँ ले जाना कि अपने मूल स्वरूप में ले जाना। ऐसा जिसका अभिप्राय हो, ऐसा जिसका कार्य हो, इस ज्ञान के अंश को हम नहीं कहेंगे, श्रुत ज्ञान प्रमाण का ये अंश होता है। वहाँ तो ऐसी बात चली है, बहुत सी बातें चली है इसमें कि जैसे शुद्ध नहीं है वैसा अशुद्ध नहीं भी है। तो शुद्ध नहीं तो उसको कहेंगे कि जो प्रमाण ज्ञान का अंश शुद्धात्म स्वरूप को विषय करता है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विषय करता है, उसको तो हम शुद्ध नहीं कहते हैं। और जो प्रमाण ज्ञान का अंश, श्रुत प्रमाण का अंश, श्रुत ज्ञान का अंश वर्तमान पर्याय की अशुद्धता को विषय करते हैं, उसको हम अशुद्ध नहीं कहते हैं। तो ये अशुद्ध नहीं कहाँ से आत्मा में ले जाता है, ये तो ले गया पर्याय की अशुद्धता तक, ये प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। तो कहते हैं कि अशुद्धता तो सापेक्ष होती है, बिना शुद्धता अशुद्धता जानी नहीं जाती। तो ये शुद्ध स्वरूप का ज्ञान पूर्वक, प्रमाण ज्ञान में शुद्ध स्वरूप रहा है, प्रमाण पूर्वक नहीं की प्रवृत्ति होती है, एकांत हुए तो नया भास हो जाता है। तो ये शुद्धता की अपेक्षा रख करके जो अशुद्धता का ज्ञान होता है वही योग्यता का, अशुद्धता कितनी मात्रा में है, कितने अनुपात में उसका रस जाता है, ये सब जो पड़खे हैं इसका समीचीन ज्ञान। तो जब शुद्धता का ज्ञान रहता है शुद्ध स्वरूप का, तब ही योग्यता का या पर्याय का सही ज्ञान सम्य ज्ञान होता है, वरना नहीं होता। तो ये अशुद्ध नहीं होने के बावजूद भी ले जाता है तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा जोर पूर्वक ये अशुद्धता का ज्ञान होता है। मैं एकांत अशुद्ध हूँ ये नहीं है, ये तो मिथ्यात्व दशा में हो ही रहा है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मोही हूँ, ये सब तो हो ही रहा है, इसको तो नहीं कह। ऐसे बहुत विचक्षण पद्धति से ये अधिकार चला है प्रवचन सार में, गुरुदेव ने भी बहुत स्पष्टीकरण एक एक नई पर घंटों तक बहुत स्पष्टीकरण दिए हैं, उसमें से ये बात चली है थोड़ी बहुत। 48 देखो ना भी क्या थी लिखो से प्रकरण छे पहला कड़स क्या थी नय श्रुत प्रमाण का अंश है। अभी बात चली कि जो नय है वो प्रमाण ज्ञान, श्रुत ज्ञान प्रमाण है, उसका एक अंश है। और प्रमाण है वो अंशी है, अंश को अवयव भी कहते हैं और अंशी को अवयवी भी कहते हैं। जैसे शरीर अवयवी है और नाक कान हाथ पैर ये सब अंग है, अवयव है इसके। वैसे प्रमाण ज्ञान है वो अवयवी है और जीव जितने भी अनंत नहीं है वो इनके अवयव हैं। प्रमाण ज्ञान को प्रमाणिकता तब और तो ही प्राप्त होती है, या प्रमाण ज्ञान को प्रमाणिकता तब प्राप्त होती है और तो ही प्राप्त होती है कि जब अंतर्दृष्टि में विभाव और पर्याय के भेदों से रहित शुद्ध आत्मद्रव्य रूप ध्रुव की श्रद्धा के अवलंबन की उग्रता निरंतर वर्तती हो। इसके पहले श्रुत ज्ञान प्रमाणिक नहीं और प्रमाण भी नहीं। वरना तो जो भी विद्वान हैं द्रव्यान युग का ग्रंथ पढ़ने वाले सब प्रमाण ज्ञानी हो जाएंगे, इसका श्रुत ज्ञान प्रमाण श्रुत प्रमाण हो जाएगा। कि भाई प्रमाण की क्या व्याख्या, कि द्रव्य गुण पर्याय सहित द्रव्य का स्वरूप ऐसा हमने जाना है, प्रमाण ज्ञान को हमने प्रमाण का विषय जान लिया इसलिए हमारा ज्ञान भी प्रमाण है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का अंतर अवलंबन हुआ क्या, ऐसा अवलंबन होने से ही ज्ञान प्रमाण होगा, जानने से नहीं होगा, अवलंबन लेने से होगा, जो अवलंबन लेने योग्य है इसका, ऐसी बात है। ये शर्त है प्रमाण ज्ञान की, ये शर्त है। वरना तो जो भी वो शास्त्री हो जावे शास्त्र पढ़ करके सब प्रमाण ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये बात खोली है गुरुदेव ने कि प्रमाण ज्ञान की प्रमाणिकता तब और तो ही प्राप्त होती है कि जब अंतर्दृष्टि में विभाव और पर्याय के भेदों से रहित त्रिकाली शुद्धात्म द्रव्य रूप ध्रुव की श्रद्धा के अवलंबन की उग्रता निरंतर वर्तती हो। चल सकता है लेकिन हमने तो जो संपादन किया है उसमें तो कोई हमने काट छांट नहीं की, जहाँ से जो बात उठाई है वहाँ जैसी पड़ी थी वैसी ले ली है। नहीं, उग्रता मैंने जोर, दृष्टि का जोर, उग्रता मैंने तेजी। तो श्रद्धा लिया, श्रद्धा का कार्य अवलंबन लेना वो भी लिया, और उग्रता में पुरुषार्थ दिखाना है कि ऐसी श्रद्धा बिना पुरुषार्थ नहीं होती, बिना पुरुषार्थ ऐसी श्रद्धा होती ही नहीं। पुरुषार्थ का अर्थ एकर्तृत्वपणा नहीं है, ये तो एक अकर्ता गुण का पर्याय है या एक धर्म है। वास्तव में पुरुषार्थ है वो परिणमन में इसका कोई चिन्ह देखना है, इसका कोई भाव देखना है, तो जोर आता है जहाँ जहाँ आवेग होता है, वेग होता है, जोर होता है, उसमें पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ का चिन्ह है प्रकट रूप में। ऐसा एक गुण है कि आत्मा में अनंत वीर्य पड़ा है, तो पर्याय में इसका जब जोर होता है तो कभी उग्रता शब्द से भी उसको बताते हैं, जोर से भी बताते हैं। नहीं, आह्लाद तो आनंद का, आनंद में जाता है, आह्लाद आनंद में जाता है। ये फोर्स है, जैसे कोई दस्ता है तो जोर से दस्ता है, वैसे फोर्स भी एक चीज होती है। जैसे ये बंदूक में, पिस्तौल में गोली होती है तो उसको फोर्स मिलता है तो वो छूटती है। फोर्स भी एक चीज है, ऐसे आत्मा में भी एक फोर्स होना ऐसे एक बात है, ये गुण की परम अवस्था है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। भले ही उसमें एकर्तापना सम्यक भाव में साथ होता है, कर्तापना नहीं होता, ये इसका स्वरूप है, लेकिन उसमें फोर्स है, आश्रय का एक जोर आता है अंतर में जाने का, पर्याय को अंतर्मुख होने में भी जोर से अंतर्मुख जाती है, ऐसी बात है। तो उसको पुरुषार्थ कहते हैं, उसको उग्रता कहते हैं। उसमें तो क्या है कि पर संबंधित जोर टूटता है, पर का कुछ कर सकता नहीं, उसमें पर संबंधित जोर टूटता है, लेकिन स्वरूप के आश्रय में जो जोर करना है उस वो प्रत्यक्ष तौर में आता है ज्यादा। मैं ऐसा ही प्रत्यक्ष हूँ, इसमें ये जोर आता है, ये अस्थि का पड़खा है, वो नास्तिक का पड़खा है। तो जोर है वो अस्थि के पड़खे से आती है, अस्थि के अवलंबन से आती है, इसी का नाम उग्रता है। इसमें जोर आता हूँ, जोर से आता है। जैसे हमने जाना कि आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ है, और ऐसा अनंत गुण का निधान जो है वो अपना स्वरूप है आत्मा। तो ये तो जाना तो सही, लेकिन जब इसका जोर नहीं आता है तब कार्य संपन्न नहीं होता है वहाँ तक। तो ज्ञान के साथ पुरुषार्थ का की प्रयोजना होनी चाहिए। एक श्रीमद जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है शुरू शुरू में कि निश्चय के विषय में निश्चय धर्म की प्रयोजना ज्ञानियों के हृदय में रही है। क्या कहा? निश्चय में निश्चय की प्रयोजना ज्ञानियों के हृदय में रही है, उतनी बात चलती है। उतने ही शब्द पढ़े हैं श्रीमद जी के कि निश्चय में निश्चय की प्रयोजना ज्ञानियों के हृदय में पड़ी है, उतनी बात चलती है। ये प्रयोजना क्या चीज है कि ये प्रयोजना में संतुलन बैठना द्रव्य पर्याय का, आगम अध्यात्म का, और इस प्रयोजना में पुरुषार्थ का साथ जुटाना, योग होना, ज्ञान के साथ पुरुषार्थ का भी योजना मैंने योज टू जॉइन साथ में हो जाना, ये जो प्रयोजना है ये ज्ञानियों के हृदय की बात है। क्योंकि विधि का विषय विकल्पातीत है तो वचनातीत तो है ही, क्या कहें उसको, ये ज्ञानियों के हृदय की चीज़ हो गई। न ये वचन में आती है वाणी में, न ये विकल्प में आती है, क्योंकि विकल्पातीत चीज है। ऐसे जो कार्य पद्धति है इसके विषय में ये सब बातें समझनी पड़ती है कि क्या कहने चाहते हैं इसमें। मैंने पुरुषार्थ तो निरंतर बरतता है, पुरुषार्थ तो निरंतर रहता है। नहीं, वो फोर्स तीव्र मंद हो सकता है, बंद नहीं हो सकता है, निरंतर चालू रहता है। तीव्रता मंदता अलग चीज है और बंद होना एक दूसरी चीज है। तो बंद तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ना वो हाँ चालू तो है निरंतर। फिर तो क्या है कि आप एक मजला बना लिया मकान का, फिर एक ईंट रखते हैं तो आप कहते हैं कि ये पहली ईंट रखी है, लेकिन एक मजले के बाद है, इसकी ऊंचाई के बाद है, फिर दूसरी ईंट रखी, फिर तीसरी रखी, लेकिन कहाँ, एक मजले के बाद है। जैसे पुरुषार्थ तो चालू हो गया, फिर ये तीव्र मंद का और भी एक प्रभेद है, ये भेद का प्रभेद है, विशेष भेद है, उतनी बात है। लेकिन फोर्स है ही नहीं, पुरुषार्थ है ही नहीं, तो बात नहीं। मैंने ये बात पुरुषार्थ का एक बहुत अलग ही प्रकरण है, वीर्यानुप्रवाद इसको कहते हैं, वीर्यानुप्रवाद। जैसे ज्ञान प्रवाद है, दृष्टि प्रवाद है, बारह अंगों में है ना सब, ऐसे वीर्यानुप्रवाद है आता है, श्रुत की पूजा में सब आता है। एक अलग प्रकरण है ये, अलग प्रकरण इसलिए है, समय हो चुका है। कि दोष क्षायिक सम्यक दृष्टि को ले लो आप, दो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, एक ही काल में हुए हो ऐसे लोग, पर समझो कि इनका ज्ञान सम्यक हो गया है, दृष्टि पूरी की पूरी सम्यक हो गई है, पूर्ण दृष्टि तो अधूरी नहीं रहती, ज्ञान सम्यक है, भले अधूरा है फिर भी सम्यक है। अब दोनों के मोक्ष जाने में अंतर क्यों पड़ता है? जितना पुरुषार्थ उतना अल्पकाल में वो जाएगा मोक्ष में, और जितना मंद पुरुषार्थ उतना क्या काल ज्यादा लगेगा। कोई पीछे से हुए और आगे चले जाते हैं, इसका यही कारण है। हाथ में हो क्या पीछे हुए वो आगे हो जाना, ये बनता है कि नहीं? इसलिए इसका एक स्वतंत्र प्रकरण है, सम्यक सावधान ज्ञान होने के पश्चात भी एक उसका अलग सा प्रकरण है, ऐसी बात है।
तो